प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
रेडियो अर्पण 90.8 FM पर मैं शुभ्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में। आप सब ये जानने को बेकरार होंगे कि आज हम आपकी मुलाकात किनसे करवाने जा रहे हैं, वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, रेडियो से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए ज्यादा इंतजार न करवाते हुए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के सप्ताह के श्रोता चंद्रेश गौहर जी से। आप सागर से हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका चंद्रेश जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मैं अर्पा की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उसने मुझे सप्ताह का श्रोता घोषित करके आज मुझसे श्रोताओं से ही रूबरू करवाने का मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से अर्पा रेडियो की पूरी टीम का आभारी हूँ।
सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है।
मैम मैं अस्पताल लोक केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर हूँ, और यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका एक एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर एक विभाग है, उसमें तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। और परिवार में मेरी श्रीमती जी हैं, और वर्तमान में मेरे बेटा है, एक बेटी है, और अमूनन लोग कहते हैं कि माँ हमारे साथ रहती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मैं माँ के साथ रहता हूँ।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी चंद्रेश जी।
जी, और रेडियो से मेरा जुड़ाव तो लगभग 35 वर्ष पुराना है, और रेडियो से जुड़ने की प्रेरणा मुझे विरासत में मेरे दादाजी से मिली।
अच्छा।
दादाजी, क्योंकि मेरे पिताजी भी रेडियो के बहुत अच्छे श्रोता थे और रेडियो समीक्षक भी थे।
अच्छा।
हाँ, दादाजी से मुझे रेडियो सुनने का जो प्रेरणा मिली वो हमसे ये कहा करते थे, बेटा जब तुम एक साल के थे और जब तुम रोया करते थे तो मैं तुम्हारे कानों के आगे रेडियो रख देता था और तुम चुप हो जाते थे।
ये बात,
ये जो रेडियो सुनने का जो जुनून है जो मुझे बचपन से ही रहा है।
आपने ये याद दिला दिया हम सबको, जैसे हम भी जब बचपन में रेडियो सुना करते थे और जब युववाणी की धुन बजा करती थी रेडियो पर तो धुन के साथ सब थिरकने लगते थे, बहुत अच्छा लगता था।
नहीं, वो रेडियो में जो जीवटता पहले थी वो आज भी है मैम, ऐसी बात नहीं है। रेडियो में समय के साथ कुछ नहीं बदला, बस ये है कुछ तकनीकियां आ गई हैं, उससे रेडियो का प्रसारण और रेडियो के श्रोता भी जुड़ गए हैं। उसका पहले क्या होता था, कुछ तकनीकी वजह से स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी क्योंकि बहुत दूर से वो रिले होते थे कार्यक्रम, तो हमारे यहाँ तक पहुँचने में कुछ व्यवधान पैदा होते थे। लेकिन अब नई नई तकनीकी आने से साफ स्वच्छ और स्पष्ट आवाज हम लोगों को कानों में हमेशा गूंजती है।
जी, तो पहला कार्यक्रम आपने कौन सा सुना था रेडियो पर, कुछ याद है आपको?
हाँ मैम, मैं मुझे अच्छे से याद है मैम, 2 अक्टूबर 1985 को मेरा पहला पत्र और मेरा पहला फरमाइशी गीत उर्दू सर्विस से बजा।
अच्छा।
और उस समय मुझे याद भी है कि कौन सा गीत वहाँ उर्दू सर्विस में सुनाया गया था। मुझे याद है उस समय फिल्म आरजू का एक गीत मुझे सुनाया गया था, अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा और जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।
जब आप छोटे रहे होंगे उस समय आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा कि कभी आप रेडियो पर इस तरह के प्रोग्राम में जाएंगे और श्रोताओं से आपकी बातचीत होगी, परिचय होगा।
बिल्कुल मैम, कभी भविष्य में नहीं सोचा था ऐसा, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और आज मैं आप लोगों से रूबरू हूँ।
तो चंद्रेश जी, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन पहले आपकी पसंद का एक गीत हो जाए।
जी बिल्कुल मैम, फिल्म का नाम मैं बता देता हूँ मैम, आप तो ऐसे ना थे, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। मैं ये रेडियो के लिए ही समर्पित कर रहा हूँ ये गाना, क्योंकि रेडियो ही मेरी जिंदगी में जिस जब से शामिल हुआ है तो रेडियो से मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। मुझे संस्कार सीखने को मिले रेडियो से, मुझे लोगों से अपने प्रति सेवा भाव करने का मौका मुझे रेडियो के माध्यम से मिला, क्योंकि समय समय पर रेडियो पर जब इस तरह की बातें, स्वास्थ्य संबंधी सूचना परक जो जानकारियां आती हैं, रोजगार संबंधी जो जानकारियां हम लोगों को मिलती थी, तो कहीं ना कहीं इनको सुनकर हमने अपने जीवन में आत्मसात किया और रेडियो को हमने अपना जीवन साथी बनाया। रेडियो को जब जीवन साथी बनाया तो रेडियो से हमने बहुत कुछ पाया है। खोया कोई नहीं, हमने अपना जीवन में कुछ नहीं खोया, रेडियो ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो आज मैं ऐसे वाद्य यंत्र को और ऐसे संस्थान को मैं नमन करता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं इस रेडियो की बदौलत ही हूं।
तो चलिए, आपकी पसंद पर हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। Thank you. इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रेडियो अर्पा पर। और सप्ताह के श्रोता के रूप में आज हमारे साथ हैं सागर से चंद्रेश गौहर जी। तो चंद्रेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे सागर के बारे में।
हाँ मैम, सागर चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में चारों तरफ बसा हुआ क्षेत्र है सागर, और सागर की ये विशेषता है, ये झीलों की नगरी भी कहा जाता है सागर को।
अच्छा।
और सागर में बहुत राष्ट्रीय स्तर के महाकवि पद्माकर जी हुए हमारे यहाँ, और लाखा बंजारा हुए, और सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ शख्सियत हुई वो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी रहे, जिन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति दान करके सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है।
जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मुझे लगता है कि पहले ज्यादातर लोग हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से ही डिग्री हासिल किया करते थे।
बिल्कुल बिल्कुल,
और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये।
बहुत। और मैं आपको स्मरण दिला दूं, आज से जब अपना ये रायपुर और ये बिलासपुर जब छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था तब ये मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था।
जी जी।
वो मध्य प्रदेश के जो जो स्टूडेंट्स हैं आपके, अपने रायपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ और ये दुर्ग रायपुर बिलासपुर के ये सारे श्रोता लोग जो छात्र वगैरह थे वो अध्ययन करने के लिए यहाँ आया करते थे।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और जी, और ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की भी देन है कि आज हिंदुस्तान में ये विश्वविद्यालय अपना एक अलग का मुकाम बनाए हुए है। आज देश में प्रतिष्ठानों में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है। यहाँ की शिक्षा और यहाँ की गुणवत्ता विशेष रूप से सारे क्षेत्र में विख्यात है।
जी, और सौभाग्य की बात है कि मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला था। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, पहाड़ी पर बसी हुई, बहुत अच्छा लगता है।
जी, जी,
है ना? जी, जी, भारत का हृदय कहलाता है सागर जिला।
और सुरम्य पहाड़ियों पर बसा हुआ है ये शहर हमारा
जी।
और ये विश्वविद्यालय जो स्थापित है बिल्कुल पहाड़ी पर स्थित है, और चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर होता है, और भारत के अधिकांश प्रांतों से यहाँ पर छात्र छात्राएं अध्ययन कर रही हैं और अध्ययन के लिए यहाँ आतुर रहते हैं।
जी, आप ये बता सकते हैं कि सागर का नाम सागर क्यों पड़ा?
एक्चुअल में ये सागोर था, मैम एक्चुअल में सागोर था ये उस समय था। तो सागर की वजह से क्या हुआ कि यहाँ लाखा बंजारा एक आए हुए थे, तो उनका एक बहुत बड़ा किंवदंती भी मानी जाती है कि जब सागर, जब वो लाखा बंजारा जी यहाँ सागर आए हुए थे तो वो एक्चुअल में क्या होता, जानवरों का एक समूह लेकर चलते थे वो, तो वो जब यहाँ आए सागर के, उनके साथ उनको पानी वानी की दिक्कत हुई मैम यहाँ पर, तो उनको रात में किसी ने सपना दिया कि आप एक काम करेंगे कि आप अगर अपने बच्चे की बलि अगर आप दे देंगे तो ये पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो लाखा बंजारा ने अपने इकलौते बेटे की बलि देकर इस सागर का नाम रोशन किया है, और मतलब जो आज जो पहचान सागर की मिली है वो लाखा बंजारे की वजह से मिली है, और झील की वजह से सागर ही नाम पड़ा है।
ये तो गंती जो आपने बताई है, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ये बात नहीं जानते होंगे, तो एक नई जानकारी उन्हें मिली है। और हो सकता है कि कभी वो लोग आपसे मिलने सागर घूमने और ये झील देखने आए।
स्वागत है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, और आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके।
तो मेरा ये मित्रों से, रेडियो मित्रों से और रेडियो श्रोताओं से मेरा आत्मीयता के तार आज भी जुड़े हुए हैं। देश के अनेक प्रांतों में मेरे असंख्य रेडियो श्रोता मौजूद हैं, जिनसे आज भी मेरा परस्पर व्यवहार बना हुआ है, और हम लोगों की बातों का आदान प्रदान हर माह, हर सप्ताह, हर दिन हुआ करता है। रेडियो ने हमें भारत के असंख्य श्रोता दिए हैं, जो आज हम लोगों में मित्रवत, भाई और बहनों जैसा लोगों का संबंध आज भी कायम है। एक सगे भाई से उतना अच्छा संबंध स्थापित नहीं हो सकता जितना हम रेडियो श्रोताओं के बीच जो अटूट और स्नेह और परस्पर व्यवहार आज हम लोग का कायम बना हुआ है।
जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही स्नेह और प्यार की भाषा जो है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ी भाषा है। वैसे सागर में कौन सी बोली बोली जाती है?
सागर में मैम बुंदेलखंडी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भाषा का ज्यादा प्रचलन है। और कहिए तो थोड़ा सा बुंदेली का मैं भूत भी आपको बता सकता हूँ।
बिल्कुल।
आए भैया कहाँ जाते हैं भैया आप? हैं? कुछ नहीं भैया, मैं तो यहीं अपने काम आया रहा और थोड़ा सा समय हो गया तो मैंने कहा चलिए अब घर को चलता जाए। ये हमारे यहाँ का बुंदेली छंद का वो है और बुंदेली भाषा जो इतनी कंठप्रिय भाषा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस भाषा को सुन ले तो वो इसकी ओर खींचा चला। मैं आपको बताऊं अधिकांश क्षेत्र आपका ये जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो प्रांत है जैसे अनूपपुर हुआ शहडोल हुआ यहाँ पर अधिकांश लोग आज भी बुंदेलखंड की बोली बोलना पसंद करते हैं। मैम तो बुंदेली में वो मिठास है और वो अपनापन है कि हर भारतीय इसकी ओर खींचा चला आता है।
बिल्कुल चंद्रेश जी, जब आपने बोलकर बताया ही है तो हम ये चाह रहे थे वहाँ का कोई बुंदेलखंडी लोकगीत अगर उसकी दो पंक्तियाँ आपको आती हो तो गुनगुना सकते हैं।
बुंदेलखंड की जो फोक संस्कृति है उसमें एक बहुत अच्छा लोकगीत जो होते हैं हमारे यहाँ तो अक्सर शादी विवाह या उन अवसरों पर गाई जाती हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गाना चाहूँगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
राम जू धनी मोरे राम जू धनी राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी।
बहुत 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 सुंदर आपने गुनगुनाया भी। इसी बात पर कौन सा गीत आप अब हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे अपनी पसंद का?
मैम इस समय जहन में मेरा एक गीत आ रहा है फिल्म है इंतकाम। इंतकाम का ये हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए ये भी रेडियो के लिए समर्पित है क्योंकि रेडियो हमारे लिए है और तुम्हारे लिए भी है। रेडियो जो रेडियो से मुझे अपनापन और जो प्रेम मिला है मैं ये सारे गीत आज रेडियो को ही समर्पित करूंगा।
बिल्कुल तो, और ये बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि रेडियो श्रोताओं के लिए है और श्रोता साथी जो है वो रेडियो के लिए है ना।
बिल्कुल बिल्कुल।
आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं इंतकाम फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।
हमारे लिए पूछ रही है, बहार पूछ रही है चमन के फूलों से, ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए।
सोच में फूल है हम मगर चल दिए, सोच में फूल है हम मगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो।
हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए,
फिर जमाने का क्या है हमारा न हो।
आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा।
रेडियो अर्पा 90.8 एफएम पर इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर हाजिर हूँ मैं शुभ्रा, और हमारे साथ हैं सागर से हमारे सप्ताह के श्रोता चंद्रेश गौहर जी। तो चंद्रेश जी, रेडियो के प्रति जो आपका समर्पण है, जो स्नेह है ना
जी,
वो तो हम आपकी बातों से समझ ही पा रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि आप जॉब में भी हैं, रेडियो सुनने के लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं?
मैम, मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए आपसे कहना चाहूंगा, कभी अगर आपका सागर आगमन हो तो हमारा सौभाग्य होगा कि आपके चरण हमारे घर पर पधारेंगे, और जब हम आपका आगमन जब हमारे घर होगा तो देखिएगा हमारे यहाँ किचन में एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ है।
अच्छा।
हमारे यहाँ एक बाथरूम में ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, हमारे यहाँ एक गैलरी में साउंड ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, मतलब हमारे यहाँ घर के चारों कोने में आपको रेडियो रखे हुए मिल जाएंगे, और सारे रेडियो चालू हालत में मिलेंगे आपको।
क्या बात है चंद्रेश जी,
ये रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी, और मेरा पूरा परिवार इसमें, मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इसमें मेरी श्रीमती जी का बहुत बड़ा भी योगदान है। श्रीमती जी भी रेडियो की इतनी अच्छी लिसनर है कि जर्नल कभी कभी क्या हो, समय अभाव के कारण मैं कुछ कार्यक्रमों को नहीं सुन पाता हूँ, तो हमारी श्रीमती जी मुझे बताती हैं कि आज फला स्टेशन से ये वाला कार्यक्रम आया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, तो वो भी रेडियो की एक बहुत अच्छी लिसनर है।
हम उनका नाम जान सकते हैं?
श्रीमती वंदना गौहर जी।
वंदना जी, आपने रेडियो श्रोता के रूप में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, ये हमें पता चला है।
बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, रेडियो ने जीवन में मुझे बहुत कुछ दिया है मैम, कुछ दिया है, और रेडियो से जुड़ने पर मुझे कई बार राष्ट्रीय स्तर के जो श्रोता सम्मेलन हुआ करते हैं उसमें कई बार मुझे सर्विसेज लिसनर का भी अवार्ड मिला है मैम, 3-4 बार मुझे बेस्ट लिसनर का अवार्ड मिल चुका हुआ है। 1998 एवं 2004 में मुझे जोधपुर राजस्थान में जो राष्ट्रीय स्तर का श्रोता सम्मेलन हुआ था, मुझे बेस्ट लिसनर का अवार्ड मुझे वहां पर मिला मैम। 2010 में मुझे जामनगर गुजरात में मुझे राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला, बेस्ट लिसनर का अवार्ड मुझे मिला
जी।
अभी छत्तीसगढ़ में विगत कुछ वर्षों पूछ होता सम्मेलन जो आयोजित किए गए थे उसमें विविध भारती की सुरीली धड़कन के जो अनाउंसर हैं कमल शर्मा जी और प्रमोद त्रिपाठी जी, उनके करकमलों से के माध्यम से भी मुझे 2 बार वहां सम्मानित किया जा चुका है, और रेडियो में जो अपनापन, जो प्रेम, जो इसने मुझे रेडियो ने दिया है, उसको तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, क्योंकि अगर आज रेडियो नहीं होता तो शायद ही आपसे मेरी शायद बात हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेडियो के माध्यम से ही आज मेरी आपकी मुलाकात हो रही है
जी। तो रेडियो अर्पा से आप कब जुड़े?
जब से ये प्रसारण इसका आरंभ हुआ है तब से मैं रेडियो प्रसार, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो रेडियो अर्पा तो मैं जरूर सुनता हूँ मैम, और जो अब जिस समय जिस कार्यक्रम में अभी आपसे मेरी बातचीत हो रही है
जी,
ये कार्यक्रम तो मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, उसका कारण ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं की अभिरुचि और श्रोताओं के बारे में हमें जानने का अवसर मिलता है, ऐसे श्रोता जिनको अक्सर हम रेडियो पे सुना करते थे और हमें उनके बारे में कुछ जानकारियां नहीं होती थी, और रेडियो पे उनकी फरमाइश को सुन लिया करते थे, उनके विचार सुन लिया करते थे। लेकिन आपके अरबा रेडियो के माध्यम से ये जो कार्यक्रम श्रोता के सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इसमें श्रोताओं के बारे में आप संपूर्ण जानकारी हम श्रोताओं को देने का भरपूर प्रयास करते हैं, तो ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत उपयोगी और सार्थक लगता है। और इस कार्यक्रम को मैं सुनना क्या मतलब कभी भूल भी नहीं सकता इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगता है। और आपके केंद्र से जो अनीश जी जो कार्यक्रम लेकर आते हैं, अनीश के संग मितान के रंग, जो हमें छत्तीसगढ़ी संस्कृति से रूबरू कराता है और छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाता है, वो कार्यक्रम भी मुझे बहुत पसंद। श्रोताओं की कलम से संबंधित एक जो कार्यक्रम आता है वो भी मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है। और संजय टंडन दीदी द्वारा जो शीर्षक गीत प्रस्तुत किए जाते हैं वो तो लाजवाब होते हैं वो कार्यक्रम, और बहुत मतलब तन्मयता और बड़ी लगन से इन सारे कार्यक्रमों को मैं सुनता हूँ।
अच्छा, रेडियो से जुड़ी कोई बहुत खास बात या कोई ऐसी खास घटना जो आप श्रोताओं से शेयर करना चाहें?
रेडियो से जुड़ी हुई तो मुझे एक घटना अभी भी याद आ रही है मैम
जी,
जब मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ मैम, और उस समय आकाशवाणी छतरपुर से एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम आता था, वो जब आप गुनगुना उठे, मतलब वो श्रोताओं की घटनाओं पर आधारित एक कार्यक्रम होता है मैम। और जब मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ और उसी दिन उनकी शव यात्रा निकल रही थी मैम, लेकिन मैंने ट्रांजिस्टर को धीरे से कानों में लगाते हुए, छोटा सा ट्रांजिस्टर था मेरे पास, उसको कानों में लगाते हुए मैं शव यात्रा में शामिल होता रहा। तो रेडियो से जुड़ी हुई मेरी यही घटना है कि मतलब दुख की घड़ी में भी मुझे खुश करने का कार्यक्रम रेडियो ने किया है। तो रेडियो ने तो मुझे ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी, कि घर में हमारे पूरे परिवार में मातम छाया हुआ था, मातम छाने के बाद भी मैंने रेडियो का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रेडियो से मुझे हो सकता है उस दुख को सहन करने की बहुत बड़ी शक्ति मुझे प्रदान हुई हो।
बहुत बड़ी बात आपने बताई, और वाकई ये एक रेडियो के प्रति समर्पण की इंतहा मैं कह सकती हूँ कि आप रेडियो इस कदर सुना करते हैं और रेडियो से आपने इतना कुछ सीखा है, समझा है। रेडियो का आपके जीवन में जो महत्व है वो बिल्कुल हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है। और वर्तमान समय में रेडियो की भूमिका को कैसे देखते हैं आप?
रेडियो हमें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाला माध्यम है। रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। रेडियो अपनी संस्कृति से पहचान करने वाला माध्यम है। मैं ये मानता हूँ स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाला सबसे सस्ता और सुलभ साधन रेडियो ही है, इसलिए मैं रेडियो को अपने जीवन में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण अंग मानता हूँ इसको, रेडियो को।
जी, खास तौर से अभी जो कोरोना काल था उसमें तो रेडियो की भूमिका और
बहुत रही
है ना।
बस मैं सलाम करूंगा आप लोगों के, हम लोग कोरोना की डर की वजह से और सरकार की गाइडलाइन की वजह से हम लोग तो घर में बैठे रहे, लेकिन हम लोगों का स्वस्थ मनोरंजन कराने के लिए आप लोग खुली हवाओं में घूमते रहे, और कितने कष्ट सहने के बाद भी आप लोगों ने हमें स्वस्थ मनोरंजन हम लोगों को दिया, और रेडियो ने बहुत कुछ मोटिवेट किया और इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोगों को जागरूक किया, हम लोग को एक नई प्रेरणा दी। उसी का परिणाम है कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो कोरोना के काल के गाल में कितने लोग समा गए हैं, कितने बेजुबान, कितने लोग हमसे बिछड़ गए हैं। हमें संबल दिया इस कोरोना काल में रेडियो ने, रेडियो ने हमें ताकत दी जीने के लिए, जीने की एक नई प्रेरणा हम लोगों को दी, और इससे लड़ने के लिए जो हमें समय समय पर जो बहुमूल्य हम लोग को जानकारियां दी वो हम लोगों के लिए जीवन में बहुत कारगर सिद्ध हुई।
जी, तो चंद्रेश जी अब एक और गीत हमारे श्रोताओं के लिए अपनी पसंद का बताइए।
मैम अगर आपकी इजाजत दो तो फिर मैम मैं गोपी का एक गीत सुनना चाहूंगा।
जी,
अकेले ही अकेले चला है कहाँ, रहेगा क्या कहेगा ये मौसम जवा, उना जाना जा उना जाना जा ओ राही अलबेले, हम सफर भी कोई साथ ले ले, हम सफर भी कोई साथ।
वाह, बिल्कुल आपकी पसंद का ये गीत श्रोताओं के लिए हम सुनवा रहे हैं रेडियो अर्पा 90.8 FM पर। गोपी फिल्म के इस गीत के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। जी हाँ, रेडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सागर से चंद्रेश गौहर जी। तो चंद्रेश जी, जैसा कि सवाल मैं हर किसी से करती हूँ, अगर आपको रेडियो अरपा पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे?
मैं जो कार्यक्रम अभी वर्तमान में आप पेश कर रही हैं उसे पेश करना चाहूंगा मैम, क्योंकि ये बड़ा लोगों की दिलों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है मैम। श्रोता अपने दिल की बात आपसे कह लेता है, तो मैं सप्ताह के श्रोता का कार्यक्रम ही प्रस्तुत करने का मेरा मन हमेशा रहा है और रहेगा मैम।
मतलब मेरी छुट्टी करवाना चाह रहे हैं आप रेडियो?
नहीं क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ये हम लोगों के जज्बातों से जो जुनून से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है हमारा, तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम लगता है ये हम लोगों का।
ये तो आपने बताया कि आप रेडियो अरपा पर ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता साथी आपकी बात सुन रहे हैं इस वक्त, और सागर के बारे में भी आपने बहुत कुछ बताया है, झील और लाखा जी के बारे में, है ना? तो बहुत सारे श्रोता साथी वहाँ आना भी चाह रहे होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सारे श्रोता भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम आमंत्रित करना चाहूंगा, और बहन जी आपको भी और पूरी अरबा टीम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि एक बार जरूर सागर आप विजिट जरूर करें मैम।
जी, और वहाँ पहुँच के हम लोग शायद मिलकर ये गाना गाएं, सागर किनारे दिल ये पुकारे।
क्या बात है, क्या बात है,
रेडियो के लिए है ना
कि मन 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 खुश कर दिया मैं। जी
तो हमें भी बहुत अच्छा लगा चंद्रेश जी आपसे बात करके।
सच मानिए दीदी, इसके पहले भी मैं कई केंद्रों से अपने साक्षात्कार दे चुका हूँ
जी,
लेकिन अपनापन और प्यार जो अरपा ने दिया है
जी,
उसे तो जीवन भर में नहीं भूल सकता मैम। और रेडियो अरपा का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा कि एक ऐसे छोटे से श्रोता से आपने अपने जज्बात बोलने का अवसर दिया, उसे बोलने का मौका दिया। मैं अरपा की पूरी टीम का आभारी हूँ और आभारी ही रहूंगा
जी। और चलते चलते हमारे श्रोताओं से, अपने दोस्तों से, मित्रों से क्या कहना चाहेंगे आप?
मित्रों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मौसम अपनी अलग करवटें बदल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है तो कभी ठंड हो जाती है, तो ऐसे मौसम पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और बेजुबान जो पक्षी हैं उनका भी ख्याल रखें। कम से कम उनके लिए अपनी घरों की छत पर या घरों के आंगन में एक किसी बर्तन में उन्हें पानी रख दें, ताकि वे बेबी जीवन जीने का अपना अधिकार जी सके, क्योंकि वो तो मूक प्राणी है बेचारा, वो कहीं बोल नहीं सकता है। तो यहाँ हम लोगों का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन बेजुबानों को भी कुछ ना कुछ दाना पानी और पानी की व्यवस्था कराती रहें, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और इस धूप भरी गर्मी से जब भी निकलें तो आप जो भी साधन आपके पास हैं उन साधनों का उपयोग करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे और ये देश सुरक्षित रहे।
बहुत अच्छे विचार हैं आपके चंद्रेश जी। वाकई अभी गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी की बहुत जरूरत होती है जो उन्हें मिलता नहीं है, तो सकोरे में पानी रखने की जो बात आपने कही है बहुत अच्छी है। ये हम सबके सीखने के लायक बात है, सभी श्रोता भी, हम सब भी ये चीज अपने घर में जरूर करें। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, हमारे श्रोताओं से इजाजत लेने का। लेकिन उससे पहले एक और गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें चलते चलते, वो गीत जरूर हम सुनवाएंगे।
मैम फिल्म है अपनापन, अपनापन का आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
बहुत सुंदर गीत है, गीतों से भी आपके जो मन के भाव हैं वो जाहिर होते हैं, आपका लगाव जाहिर होता है, रेडियो के प्रति आपकी दीवानगी जाहिर होती है। निश्चित रूप से आप जैसा श्रोता पाके रेडियो अर्पा वाकई गौरवान्वित महसूस करता है, और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता साथी सुन रहे हैं जो खुद भी रेडियो से जुड़े हुए हैं इसी दीवानगी की हद तक, उन सभी श्रोता साथियों को भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो इसी तरह रेडियो सुनते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बहुत धन्यवाद, आभार आपका चंद्रेश जी, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और इतनी सारी बातें आपने बताई। और अब श्रोता साथियों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।
रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता, एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।